सोचा उधर बजने लगा नहीं गया आ जाएगा
भाई साहब। ओम शांति।
ओम शांति
भाई साहब, हम बहुत बहुत धन्य है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत विशेष टॉपिक पर आपका स्पेशल क्लास होने वाला है। बस एक दो मिनट में ही कुलदीप दीदी आ रहे भाई साहब, तब तक थोड़ा सा योग का गीत चालू करेंगे।
बजाओ बजाओ।
जी जी भाई साहब, थैंक यू।
ओम शांति।
ओम शांति कुलदीप,
आपका बहुत बहुत स्वागत है सूरज भाई। बहुत दिनों से आपको कांटेक्ट करना चाह रही थी मैं, आपका फोन हमेशा स्विच ऑफ आता है।
स्विच ऑफ रहता हूँ आजकल।
आपका फोन दूसरा है तो बताइए, मेरे पास जो नंबर है हमेशा स्विच ऑफ आता है।
कहीं बहुत पुराने वाला तो नहीं?
हाँ बहुत पुराना है, पुराने जमाने का ही।
नहीं वो नहीं, वो नहीं है।
अच्छा अच्छा,
लिखा लेंगे, किसी को है कोई
वंशी भाई के पास? लिख लीजिए, लिख लेंगे भाई साहब, बोलिए।
809।
अच्छा अच्छा, लिख लो ना, क्या होता सभी लिख लेंगे। 809
4050
5915 भाई साहब, आज आपको पूरा आंध्र तेलंगाना और कई विदेश के सेंटर भी हैं जिनका हमारे पास कांटेक्ट है, सभी को आपका ये भेजा है लिंक, तो सभी सुनेंगे। तो आप अभी आप शुरू करेंगे, आपका बहुत स्वागत है सभी का।
निश्चय निर्भयता और निश्चिंत जीवन, सचमुच अब वो समय आ गया है जब इन तीनों महान धारणाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप हमें दिखाना है। हमारा स्वयं में कितना निश्चय है, इस बात में कितना निश्चय है कि बाबा हमारा साथी है, वो हमारी छत्र छाया है, तो उसकी छत्र छाया में हम कितने सुरक्षित हैं, इसमें निश्चय, अपने में भी निश्चय, बाबा में भी। और बहुत बड़ी बात होती है ड्रामा के निश्चय की, परिवार की बात तो है ही, पर ड्रामा में निश्चय हो, और निश्चय कुछ बातों में, सभी मेरी बात सुनकर अपने को देखेंगे कि हमें ड्रामा की इन बातों में कितना निश्चय है, और उससे हम में निर्भयता बहुत आएगी। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, एक्यूरेट है, वही होना चाहिए। क्यों हो रहा है पता नहीं, कब जाएगा, क्या राज है इसके पीछे, कई लोग सोच सोच के परेशान हैं। परेशान नहीं होना है, यही अब होना है। मैं तो जो क्लास सुनते हैं उन्होंने सुना होगा, 2-3 साल से क्लासेस में बता रहा था कि 2020 से 30 के बीच सृष्टि को बहुत झटके लगेंगे, कम से कम 10। इनके कई लक्ष्य होंगे, उनमें एक लक्ष्य होगा ब्राह्मणों को जगाना, क्योंकि तो ब्राह्मण बहुत गहरी नींद सो गए थे, बाबा नहीं आ रहा है, दादियां नहीं हैं, यज्ञ में भी कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो परेशान होते थे, तो कई संशय बुद्धि हो गए, कई छोड़ के चले गए। कुमार और कुमारियां तो बहुत गए पिछले 4-5 सालों में, तो निश्चय की परीक्षा हुई, कई लोग फेल हुए उसमें। उन्हें ये पता नहीं था जिसका ये यज्ञ है वो कौन है, उसके पास पूरी प्लानिंग है इस यज्ञ को सफल करने की। अभी तो बड़े बड़े पाठ रहे हुए हैं, साक्षात्कार का पाठ चलेगा, जय जयकार का पाठ चलेगा, संसार में हाहाकार होगी, बाबा के महान रतन प्रख्यात होंगे, बाबा का नाम हर दिल पर, उसके नाम का झंडा लहराने लगेगा। अब तो बड़े बड़े काम बाकी हैं, तो कई लोग ढीले हो गए क्योंकि ज्ञान को गहराई से नहीं समझा था, योग अभ्यास के गहरे अनुभव नहीं थे। जिनके पास योग के गहरे अनुभव होते हैं, कुछ भी हो जाए वो उनको नेग्लिजिबल समझते हैं, ये तो साइड की चीजें हैं। असली चीज जो बाबा ने हमें सिखा दी, योग अभ्यास, जिसमें परम सुख मिलता है, जिसमें आत्मा सशक्त बनती है, वो असली चीज है, उसको नहीं छोड़ते वो। तो ड्रामा की ऐसी और बातें, ड्रामा में सब कुछ पहले से ही निश्चित है। ये कैसी गुह्य बात है, इस बात में यदि संपूर्ण निश्चय है, अपनी विजय में संपूर्ण निश्चय है, तो हमारा जीवन निश्चिंत हो जाता है। चेक करेंगे अपने को, बाबा के हाथों में हमने अपना जीवन सौंप दिया है, क्योंकि बाबा के हाथों में जीवन सौंप के ही हम निश्चिंत रह सकते हैं। मान लो कोई अपनी धन संपदा के बारे में भी चिंतित है, लेकिन वो यदि बाबा के हवाले कर दे मन से भी, स्थूल में सारा न भी कह रहे उसको परिवार बच्चों की पालना करनी हो, लेकिन मन से वो बाबा के हवाले कर दे तो बाबा के खाते में जमा हो गया उसका, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो निश्चिंत हो गए। जिसके पुण्य कर्म बहुत अच्छे हैं वो भी निश्चिंत हैं, क्योंकि ज्यादा कष्ट उन लोगों को होगा और हो रहा है जिनके पाप के खाते बहुत बढ़े हुए हैं, जिन्होंने सूक्ष्म पाप भी बहुत कर लिया, इससे उनके साथ लोगों की बददुआएं हैं, दुआएं नहीं हैं, ये उन्हें कष्ट दे रही हैं। तो हम सभी, अब मैं पहले ले लेता हूं निर्भयता को, भगवान के बच्चे यदि डरेंगे तो निर्भय कौन होगा, जिनको भगवान साथ दे रहा हो। अपने से इस तरह बातें किया करें रोज सवेरे, जिनको भगवान साथ दे रहा हो वो क्यों डरे, जिनके साथ स्वयं महाकाल हो वो क्यों डरे। आज ये फोन आया मुझे अहमदाबाद से, उनके परिवार में एक को कोरोना हो गया है, माता जी ज्ञान में है, कहा सारा परिवार भयभीत हुआ है। सरकारी आंकड़ों में भी आया कि लोग कोरोना से कम मरे, भय से ज्यादा मर रहे हैं। तो हम इस तरह के भय को निकाल दें, और एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखें, भय हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी पैदा करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी वीक करता है, और जब हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी पैदा हो जाती है तो ये बाहर की निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ध्यान देंगे इस सीक्रेट पर, इसलिए अगर हम इन सब से अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें ये संकल्प रखना चाहिए, हम बाबा की छत्र छाया में सेफ हैं, हम स्वयं भी बहुत शक्तिशाली हैं, मास्टर सब शक्तिवान हैं, प्रकृति के मालिक हैं, प्रकृति का ये वायरस हमें टच नहीं कर सकता। ये बहुत ही पावरफुल संकल्प है हमारा, सवेरे उठकर 5-7 बार ये संकल्प कर लिया करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, निर्भय हूं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। सवेरे जब हम उठते हैं तो पहले 3 मिनट वही कर ले 5-7 बार, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, निर्भय हूं, क्योंकि भयभीत वो भी होते हैं जिनके अंदर पूर्व जन्म की किसी घटना का भय छुपा हुआ हो, हिडन फियर कहते हैं इसको। मान लो किसी की मृत्यु थोड़े भयानक ढंग से हो गई थी तो उसके अंदर वो भय समा गया था, किसी ने सुसाइड कर लिया था, नदी में कूद कर वो पानी में डूबा तो बड़ा कष्ट हुआ उसको, तो पानी से उसको भय रहता है, अग्नि ने कष्ट दिया तो अग्नि से उसे भय रहता है, इवन कुत्तों से बहुत लोग डरते हैं, कुत्तों से कष्ट पाया, छोटे जानवरों से डरते हैं, वो भय का रिफ्लेक्शन है कि जब भय अंदर में बैठ जाता है तो मनुष्य किसी भी चीज से डरता है, जरा ठाका भी हुआ तो मनुष्य डर जाता है। कुछ बहनों की ऐसी अच्छी अच्छी घटनाएं हैं, मैं उन्हें अच्छी कहता हूँ, वो सुनाती है, हम मुरली पढ़ रहे हैं, अब भाई बहने आते रहते हैं बीच बीच में भी, कोई देर से दरवाजा खोला, ठक जो हुआ मुरली हाथ से गिर गई, डर गए, क्या हो गया। ये सब डर पूर्व जन्मों से मनुष्य के साथ चले आ रहे, किसी की सांप काटने से मृत्यु हुई हो तो वो सांप से भयभीत होंगे, सांप अगर टीवी स्क्रीन पे भी सांप दिख जाए ना तो भयभीत हो जाएंगे। तो हमें अपने ये छुपे हुए भय को निकालना है, इस पर बहुत ध्यान देंगे। छुपा हुआ भय अगर अंदर रहा तो कोरोना के बाद और बहुत सारी घटनाएं आनी है, लोग तो अभी बोलना शुरू किया दूसरे वायरस आ रहे, पहले से ही सावधान हो जाओ, पर हम जानते हैं विश्व का परिवर्तन होगा, महाविनाश होगा, तो भिन्न भिन्न सीन हमें देखने पड़ेंगे, आवाज बहुत ज्यादा होंगी संसार में, हम सब पहले से ही समझ सकते हैं विनाश काल माना इस वसुंधरा पर भय का माहौल छा जाएगा, हर व्यक्ति भयभीत नजर आएगा, मौतें ही मौतें होंगी, अभी बहुत हो रही हैं, भारत में तो फिर भी कम है लेकिन विदेशों के कई देशों का हाल बहुत ही बुरा हो गया है। डॉक्टरों को जब कोरोना होने लगा, नर्सेज को होने लगा, तो सब लोग बहुत घबराए हुए हैं, डॉक्टर भी मर गए कई जगह कई सारे, तो घबराहट का माहौल है। हम लोग बिल्कुल शेर शेर नहीं बन जाए, बाबा कहते हैं तुम शिव शक्तियां हो, शेर पर तुम्हारी सवारी है, मृत्यु से तुम्हें डर नहीं, इसलिए निर्भय हो जाओ। इस तरह का चिंतन हमें अपने से करना है, सवेरे उठ के संकल्प करने हैं, बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, डर के संकल्पों को निकालेंगे आप, संकल्प जो रहते हैं मनुष्य के मन में, कोई अकेला होगा घर में तो ही डरेगा, ताला बंद किया हुआ होगा बाहर से तो भी डर लगेगा, कोई आ ना जाए, कोई अंधेरे से डरेगा, लाइट चली गई एक दो मिनट में भयभीत हो जाते हैं, तो ये जो छुपे हुए डर हैं इनसे हमें अपने को बचाना है और अपने निश्चय को चेक करना है कि हमारा निश्चय कहीं भी संशय में न बदले। बहुत ध्यान देना, कुछ भी होगा, ये भी होगा कि आपको लगेगा बाबा आपको मदद ही नहीं कर रहा है, हमने बाबा के लिए बहुत कुछ किया, बाबा तो साक्षी हो गया मदद ही नहीं कर रहा है, इसमें भी संशय होगा। बाबा के ये महावाक्य याद रखने हैं कि बहुत पहले बाबा ने कह दिया था, अब बाबा है साथी और अंत में हो जाएगा साक्षी, किसने क्या किया साक्षी होके देखेगा, कौन स्टूडेंट कितने पक्के हुए, किसने योग बल से स्वयं को तपा लिया, ये बाबा देखेगा। तो किसी भी कारण से संशय ना आए। कई बाबा के बच्चों की जॉब चली जाती है, अब भी छटाई बहुत होने वाली है क्योंकि कामकाज बहुत डाउन हो गए हैं, सबके इकोनॉमी डाउन हो गई है, कुछ समय के लिए बहुतों की जॉब जा सकती है, कईयों को संशय आ जाएगा बाबा ने हमारी जॉब क्यों नहीं बचाई। अब बाबा तो कह देता है मैं तुम्हारी जॉब बचाने थोड़ा ही आया, तुमने बुलाया था पतित पावन आओ, मैं तो तुम्हें पावन बनाने आया हूं। लेकिन ये याद रखेंगे, विश्वास इतना हो, निश्चय और विश्वास, अब ये दो चीजें हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है, विश्वास इतना हो कि बाबा मेरी छत्र छाया है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, अगर कुछ होता हुआ देखते हैं तो संकल्प करो हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, हम मान आत्माएं हैं, भाग्यवान हैं, हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ हैं, हमने बाबा के कार्यों में बहुत सहयोग किया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चीजें हमें निश्चिंत रखेंगी। एक बात जो मैं क्लासेस में बहुत सिखाई है, रिपीट कर देता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये अभ्यास हम रोज चालू रखा करें, मैं बहुत भाग्यवान हूं, स्वयं भगवान मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल इसमें विश्वास हो जाए, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, देखेंगे आप अच्छा ही होता रहेगा, पर विश्वास की जरूरत है, इसलिए मैं सबको कह रहा हूं आजकल कि अपने सवेरे के समय को एंजॉय करने के लिए कम से कम 10-12 ऐसे सुंदर संकल्प लिख के रख लो जो उठते ही याद करो, ताकि आप स्वयं को चार्ज कर पाओ, डलनेस ना रहे, सवेरे सुस्ती ना रहे। बहुत लोग उठ भी जाते हैं लेकिन योग करने को मन नहीं करता या योग में मन नहीं लगता, ये डलनेस की स्थिति, ये बिल्कुल ब्रेन जैसे ब्लैंक हो गया हो, ये स्थिति हमारी ना आए, तो 10-12 सुंदर संकल्प लिख के रख लो, जैसे कभी सोचा नहीं था कि जिस भगवान को पुकारते आए वो हमारे सम्मुख होगा, कभी सोचा नहीं था कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ाने आएगा, कभी सोचा नहीं होगा कि वो हमारा गुड फ्रेंड बनकर हमारा साथ निभाएगा, हम जी भर के उसे देख सकेंगे। हमने तो इतना सोचा था भगवान एक बार अपने दर्शन करा दो, हमारी भक्ति सफल हो जाए। हमने थोड़ा ही सोचा था कि भगवान हमारे सम्मुख आ जाएगा और कहेगा मुझे जी भर के देख लो, आंखों को तृप्त कर लो, बुद्धि को तृप्त कर लो। ऐसी बातें रोज सवेरे उठ के याद करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, बाबा के सर्व वरदानों का खजानों का मालिक हूँ, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसकी नजरों में हूँ, मैं उसके दिल में समाया हूँ, संकल्प करें। तो सवेरे उठते ही अगर कुछ संकल्पों से हम अपने को चार्ज कर लें तो हमारा अमृत वेला निश्चित रूप से बहुत सुंदर व्यतीत होगा। और जिसका अमृत वेला सुंदर होने लगता है अनुभवों के कारण, वो अपने अंदर कभी संशय को नहीं आने देते। विशेष रूप से जिनको विजय रतन बनना है, बहुत ये संकल्प विद कॉन्फिडेंस फुल फेथ के साथ हमें करते रहें। जो संकल्प हम बार बार करते हैं और जो ये हमारे अच्छे संकल्प हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं, इनमें क्रिएटिव एनर्जी है, आप सबको पता हो, इनमें रचनात्मक शक्ति है, निर्माण करने की शक्ति है। इसलिए जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका निर्माण होता है। बहुत अच्छी तरह इस सीक्रेट को अपने पास रखें और जीवन को इस अनुसार ढाल लें कि जो संकल्प हम बार बार करेंगे वही होगा। और विशेष करके सवेरे करेंगे तो वह तो हमारा जीवन बन जाएगा। तो मैं बहुत भाग्यवान हूं, भाग्य जगने लगेगा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता होने लगेगी, मैं विजयी रतन हूं, मुझे विजय मिलनी ही है, तो माया पर विजय होने लगेगी, मैं निर्विघ्न जीवन जी रहा हूं तो निर्विघ्न जीवन जिएंगे, मैं बहुत धनवान हूं तो धन की कमी नहीं पड़ेगी, मैं महान आत्मा हूं तो महानताएं जीवन में समाती जाएंगी। ये सब करते चले बहुत। हमें अपने जीवन को निश्चिंत जीवन बनाना है। बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल के समय में, जबकि चारों ओर चिंताओं का वातावरण बनता जा रहा है और आगे बनता जाएगा। तो बाबा के जो सुंदर महावाक्य हैं 10 कम से कम, आप अपने पास नोट करके रखेंगे, उनको पढ़ते रहेंगे। मैं उदाहरण दे देता हूं, जैसे बाबा ने कहा, जैसे आग में बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे थे, बाबा भी विनाश की अग्नि में अपने बच्चों को सुरक्षित रखेगा। कितनी सुंदर बात है, निश्चिंतता आ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। बाबा ने दो बातें बहुत अच्छी कही, जिन्होंने चाहे वो नॉन बीके भी क्यों ना हो, जिन्होंने बाबा के कार्यों में मदद की है, विनाश काल में प्रकृति उन्हें बहुत मदद करेगी, और जिन्होंने तन मन धन लगा दिया है सोचो उन्हें कितनी मदद करेगी, और जिन्होंने पूरा जीवन ही लगा दिया, बैठे हैं आपकी क्लास में बहुत भाई बहने जिन्होंने जीवन लगा दिया। मैं आज इस बात को सोच के बहुत खुश था कि हमारा पूरा जीवन भगवान के काम आ गया। अंतिम जो जीवन है 84 जीवन में, अंतिम जीवन भगवान के काम आ गया, कितनी अच्छी बात है। तो भगवान हमारे काम आएगा ना जन्म जन्म। तो जिन्होंने तन मन धन से सेवाओं में सहयोग दिया प्रकृति उन्हें बहुत मदद करेगी, जिन्होंने जीवन ही लगा दिया प्रकृति उनमें कुछ भी कष्ट नहीं होने देगी, भोजन भी मिलेगा, चाहे दूध भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी, हमें कुछ भी स्टॉक करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्न जल सब मिलेगा। ये चीज हमें निश्चिंत रखेगी, निर्भय रखेगी। और बाबा की एक पॉइंट सुन लें, बाबा ने कभी ऐसे ही पूछा था, 73 की बात है, तब हमारे सामने 76 बालक सोता था कि 76 तक तो मां विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने पूछा, जब मां विनाश का समय आएगा और तुम लोगों को भोजन आदि नहीं मिलेगा, तुम क्या करोगे? तो किसने कहा सूबी रस पी के आएंगे, किसने कहा फास्ट करने की आदत डाल लेंगे, किसने कहा योगयुक्त रहेंगे, भूख नहीं लगेगी। बाबा ने कहा नशे से क्यों नहीं उत्तर देते? जिनके पास अष्ट शक्तियां होंगी उन्हें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा, जितनी शक्तियों की कमी उतनी प्राप्ति में कमी पड़ेगी। तो हमारे ऊपर है, हम सर्वशक्ति संपन्न हैं, सब कुछ मिलेगा, अन्न जल दवाई चाय दूध सब। और बाबा ने कह दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं आप सभी, निर्भय हो जाएं कि बाबा अपने बच्चों को साक्षात्कार में इतना मग्न रखेगा कि पता भी नहीं चलने देगा कब मैं विनाश हो गया। ये सुंदर महावाक्य है, ऐसे महावाक्य नोट किया करें। एक बहुत प्रसिद्ध महावाक्य आपको याद दिला देता हूं, उस पर प्रैक्टिस करना, अपने जीवन को निश्चिंत कर देना, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देकर उससे फखुर ले लो और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। यह स्थिति, बिल्कुल हम निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए, घर जाने के लिए तैयार हो गए, कहीं मोह मोहम्मद तो नहीं, जब इशारा मिले चले बाबा आ रहे हैं, डरने की बात नहीं। ऐसी बाबा की जो सुंदर बातें हैं, 4-5 मैंने बता दी, बाकी आप लिख कर रखें, 10 बातें हो जाएं, उन्हें पढ़ते रहें, रोज पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने कहा रोज कुछ बातें अपने पास जो लिख के रखे उसे रोज सवेरे पढ़ लो, उठते ही न पढ़ो, 6 बजे तक पढ़ लो, ताकि वो स्मृति में रहें और वो हमें बल देती रहेगी, वो हमारे विघ्नों को नष्ट करती रहेंगी, वो हमारी कमजोरियों को भी नष्ट करती रहेंगी। ये सभी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें निश्चिंत जीवन जीना है, निश्चय चारों बातों में, परिवार भी हमारा अच्छा है, रामा की हर पॉइंट में निश्चय, बाबा के साथ में निश्चय, केवल ये निश्चय नहीं कि विनाश होगा और बाबा आया हुआ है, बाबा की हर पॉइंट में निश्चय, उसके साथ में निश्चय, स्वयं में निश्चय। विजय हमारी निश्चित है ही, हमारी विजय नहीं होगी तो संसार में और किसकी विजय होगी। हमें माया को जीतना ही है, परिस्थितियों को पार करना ही है, हम नहीं करेंगे जिनके साथ भगवान है तो भला कौन कर पाएगा। तो ऐसे सुंदर सुंदर संकल्प अपने लिए रखें, संकल्पों का ही तो खेल है, किसी के डरावने संकल्प हैं उनको डर है, किसी ने बाबा पर सब कुछ छोड़ दिया है तुम जिम्मेदार हो वो निश्चिंत है, और किसी ने ये संकल्प रखा हुआ मैं जिम्मेदार हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरा एक कारोबार है, मैं है, वो परेशान है। तो समर्पण भाव अपना लें आप सभी निश्चिंत जीवन के लिए। बाबा कहा करते हैं सब कुछ अपना इंश्योर कर दो बाबा के पास, बाबा का अविनाशी बैंक खुला है, सब कुछ जमा कर दो तो तुम्हारा कुछ भी नष्ट नहीं होगा। सच्चे मन से अभी कर देना, मेरा घर बाबा का यज्ञ है। बाबा ने कहा जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं वो तो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और उनकी भंडारी भरपूर रहते हैं। कर दो अभी, ये मेरा घर नहीं ये बाबा का यज्ञ है, ये मेरे बच्चे नहीं ये बाबा के बच्चे हैं, ये मेरा कारोबार नहीं, सब कुछ बाबा का है, मैं भी बाबा का, मेरा धन भी बाबा का, मेरा तन मन बुद्धि सब बाबा की। कर दो अर्पण, अब भगवान के हाथ में सौंप दिया, माना हम भगवान के पास पहुंच गए, तो वो हमारी बहुत सुरक्षा करेगा। नष्ट होगा तो हमारा थोड़ा ही होगा, हमने तो जमा कर दिया, वो बहुत मिल जाएगा हमें। इस तरह हमारा जीवन निश्चिंत हो जाएगा। तो इन तीनों धारणाओं पर बहुत अच्छी तरह से विचिंतन करें और निश्चय पूर्वक निश्चिंत रहते हुए बेफिक्र बात समझ जाए। बोलो भाई, अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को भी पूछना है तो अपने स्पीकर खोल करके चैट में रहिए, चैट में आप जाइए।
तब तक मैं एक बात और बता दूं, तब तक आप कर।
हाँ भाई साहब, आप भी आधा घंटा और क्लास करा सकते, आधा घंटा ही हुआ है
अभी, बहुत हो गया। माल ज्यादा,
माल ज्यादा माल चाहिए क्योंकि लॉकडाउन में बहुत पेट खाली हो गया। हम मधुबन नहीं आ सक रहे, कम से कम आपका क्लास मधुबन से सुनते तो थोड़ा पेट भर जाता है।
आजकल जो
आगे किसी ने प्रश्न पूछा है भाई साहब कि आगे क्या होगा, यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा।
ठीक है, मैं तो प्रश्न इसलिए इनवाइट करता हूँ ताकि आप लोगों के अनुसार मैं बोल सकूं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, कैसे हम आगे चलेंगे। अब एक चीज हो गई है इस कोरोना की समस्या में, जहाँ बहुत लोग मरे हैं ना, करोड़ों मरे हैं। चीन के बारे में एक दिन अखबार में छपा था, चीन वालों ने तो सब कुछ छुपा लिया है, शुरू तो उन्होंने नहीं किया, हो सकता है लोगों को डाउन करने के लिए किया हो, इकोनॉमी डाउन करने के लिए किया हो, क्योंकि ये भी आजकल युद्ध के तरीके हैं। कहा लिखा था कि 2 करोड़ 1 लाख लोग मारे गए चीन में, चीन ने सब कुछ छुपा लिया है। अमेरिका में बहुत लोग मारे गए, तो क्या हो रहा है, इन आत्माओं को पुनर्जन्म नहीं मिल रहा है। ये सब आत्माएं ऊपर आकाश में भटक रही हैं, तो इनका इफेक्ट नीचे आ रहा है, बैड एनर्जी नीचे फैल रही है, उसे भय भी पैदा हो रहा है। और बहुतों को ऐसा लग रहा है किसी को कोई उनके घर में घूम रहा है, किसको ऐसा लग रहा है कोई रात को उनके छाती पर बैठा है, किसी को किसी की उपस्थिति फील हो रही है। ये भटकती आत्माओं का प्रकोप भी संसार में बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को कुछ बातें कहूंगा। एक तो इन आत्माओं से डरने की बात नहीं, पावरफुल हम हैं, ये आत्माएं नहीं, बहुत पावरफुल हैं हम। और अगर हम बहुत अभ्यास करते हैं, मैं मास्टर सब शक्तिवान हूँ, तो हमारे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगती हैं, वो इन्हें दिखाई देती हैं और ये डर के दूर भाग जाते हैं। ये अच्छा अभ्यास आप सब करेंगे और अपने चारों ओर रोज 2-3 बार शक्तियों का ओरा जरूर बनाएं, शक्तियों का आभामंडल। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, तो मुझसे लाल किरणें फैल रही हैं। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, 7 बार कर लें और देखें, लाल किरणों का बड़ा विशाल आभा मंडल मेरे चारों ओर बन गया है। बहुत मजा आएगा। कोई वायरस, कोई भटकती आत्मा इस आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर सकेगी। रोज सवेरे 1 मिनट का काम है, शाम को बीच में 3 बार कर लें। एक और बहुत अच्छी चीज, आपने रामायण की सीरियल में एक सीन देखा होगा, मैं पहले इस सीन से संबंधित एक सीन, ये जो मैंने ओरा बनाने की बात कही, इससे संबंधित एक सीन की आपको स्मृति दिला दूं। रामायण में दिखाया था कि जब मेघनाथ सुमेध वो विजयी यज्ञ करने के लिए, दिग्विजयी यज्ञ करने के लिए पहाड़ी में गया, और विभीषण ने बता दिया कि इसका यज्ञ भंग करो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, तो लक्ष्मण को भेजा राम ने, हनुमान आदि सारी वानर सेना गई और उसके यज्ञ को भंग कर दिया। अब युद्ध होने लगा मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में, तो मेघनाथ बहुत गुस्से में था और उसने सबसे पहले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन देखा कि लक्ष्मण के चारों ओर शक्तिशाली प्रभामंडल है, ब्रह्मास्त्र इसको नमस्कार करके चक्र लगा के वापिस आ गया। मेघनाथ देखता ही रह गया, ये क्या हो गया। फिर उसने नारायण अस्त्र छोड़ दिया और वो भी उसको टच करके नमस्कार करके वापिस आ गया। फिर उसने सोचा अब तो और कोई चारा नहीं है, महादेव का पशुपात अस्त्र छोड़ देता हूं। उसने वो छोड़ दिया और वो भी उसके औरा को टच करके वापिस आ गया। यही मेघनाथ ने हार मान ली थी और रावण को जाके कहा था हम इन्हें जीत नहीं पाएंगे, ये देवलोक से उतरे हुए दिव्य पुरुष हैं, समर्पण कर लो। तो यही बात हमारे इस प्रभामंडल की है। अगर हम प्रभामंडल क्रिएट करेंगे, कोरोना तो आएगा ही नहीं, लेकिन कोई भटकती आत्मा कोई और चीज बीच में प्रवेश नहीं कर सके। इसका सभी बहुत ध्यान देंगे तो हम सभी को बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ना है। आगे क्या होगा, देखिए यज्ञ तो महान तीर्थ बनने वाला है, आबू के लिए बाबा ने बोला हुआ भगवान के वचन है, वो तो संपूर्ण सकते हैं ही, इसमें तो कोई संशय की बात नहीं। आबू महान तीर्थ बनेगा, साक्षात्कार के पाठ चलेंगे, जय जयकार होगी, इष्ट देव देवियां प्रख्यात होंगी, करोड़ों लोग ब्राह्मण बनेंगे, जय जयकार हाहाकार का खेल चलेगा, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, धरती हिलेगी, आकाश बहुत विनाश का कारण बनेगा। बाबा ने कह दिया था अग्नि और पानी भयानक विनाश करेंगे, तो भयानक सीन भी हमारे सामने आ रहे हैं और इसमें ही जय जयकार प्रत्यक्षता साक्षात्कार ये बहुत सुंदर सीन भी हमारे सामने आएंगे। अराउंड 2025 ये सब खेल तेजी से होने लगेगा। तो 4 साल और हम सबको साधनाएं अच्छी करनी है और अपने को तैयार करना है। जो परिवर्तन दिनों दिन होगा उसको स्वीकार करना है, उसमें ही जीना है और अपने मोहों को आसक्तियों को समाप्त करना है। तो ये सीन हम सामने देखेंगे अपने, और आप देख रहे होंगे, समझ में आ रही है सबकी ये बात कि लॉकडाउन पूरा होते ही जैसे ये वायरस जाएगा, सेवा तेजी से बढ़ेगी, 4 गुनी हो जाएगी। बहुत जो गए हुए बाबा के बच्चे वो भी वापस आ जाएंगे पश्चाताप करते हुए, और बहुत लोगों ने जिन्होंने कोर्स किए हुए, मेले देखे हुए, शिविर किए हुए, मधुबन में आए हुए, वो सब ज्ञान की तरफ झुकेंगे, क्योंकि वो सब देवकुल की आत्माएं हैं और देवकुल की आत्माएं अब जगेंगी। तो बहुत सुंदर सीन जय जयकार के अब हमारे सामने आएंगे, बाबा की सेवाएं बहुत बढ़ेंगी, लेकिन सेवाएं वही कर सकेंगे जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया है। इस चीज का सभी बहुत ध्यान देंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन बोलो।
पुरुषार्थ करने के बाद भी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, उसका कारण क्या है?
ज्ञान के बल की बहुत कमी होती है। पुरुषार्थ, योग अभ्यास, इन सब के साथ एक मनुष्य को ज्ञान का बल भी बहुत चाहिए, ताकि वो ज्ञान के बल से हर बात को लाइट कर सके, हल्का कर सके, ताकि वो ज्ञान के बल से आने वाली बातों को फेस कर सके। जो चीज भी आई है, जो भी अपनी स्थिति को बिगाड़ने वाली है, डामाडोल करने वाली है, उसके लिए हरेक के लिए ज्ञान के सुंदर पॉइंट्स को यूज करना चाहिए। तो स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, जो बाबा के पीछे मुरली चल चुकी है आपको याद होगा, कि ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभव हो, ज्ञान की हर पॉइंट शस्त्र बन जाए, जो देवियों के हाथों में शस्त्र दिखाते हैं। तो ज्ञान के बल से हम विभिन्न परिस्थितियों में अपनी स्थिति को एक रस रख पाएंगे और इससे हमारा योग भी अच्छा रहेगा। तो योग बल और ज्ञान बल दोनों ही बल हमें चाहिए।
नेक्स्ट बोलो, आप ही बोलो।
एक प्रश्न और आया भाई साहब, जाने अनजाने अगर विकर्म हुआ है उसको भस्म करने के लिए क्या युक्ति करना है?
देखिए, युक्ति तो एक ही है कि योग पावरफुल लगाएं, पर बाबा को बताने से भी उसका जो प्रेशर होता है ना, एक दिमाग पर दबाव, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। पीछे बाबा की मुरली में आ गया दो चार दिन में कि क्या बाबा को सुनाने से क्षमा मिल जाती है, बाबा माफ कर देता है, और बाबा ने उत्तर दे दिया माफी किसी को नहीं मिलती,
हल्का हो जाता है।
बाबा को सुनाने से बाबा का प्यार हमारी तरफ आएगा और वो हमें सता बहुत मिलेगी। बाकी योग अच्छा करेंगे उसको नष्ट करेंगे, योग के अलावा तो कोई और तरीका नहीं, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद जो विकर्म होते हैं वो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो स्पेसिफिकली और टाइम एक्स्ट्रा रखकर एक घंटा रोज योग करना चाहिए 3 मास तक।
एक प्रश्न टीचर बहन बार बार पूछ रहे भाई साहब, भाई जी सेंटर का आगे कार्यक्रम कैसे चलेगा, रूपरेखा कैसे रहेगा, प्रोग्राम्स होंगे नहीं, किस प्रकार से तैयारी करना है?
नहीं, प्रोग्राम तो खूब होंगे, ये सब खेल खत्म हो जाएगा, सब चेंज होता जाएगा, हमारी सेवाएं बढ़ेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सामूहिक कोर्स हमें कराने होंगे, बहुत बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे और हमें मुख्य रूप से नहीं, सेवा वैसे ही शुरू होगी, आपकी मुरली भी चलेगी, आप प्रोग्राम भी कर सकेंगे, भट्टियां भी होंगी, जिससे वही रौनक आ जाएगी सेंटरों में। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना है कि हमें अपने सेंटरों को लाइट हाउस बनाना है, क्योंकि आगे चल के ऐसे लोग आएंगे। देखिए, एक तो ज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो हमें सीख लेना चाहिए कि कोर्स हम थोड़े में कैसे दें, दृष्टि का प्रभाव ज्यादा डालें, हमारी दृष्टि ऐसी पावरफुल हो, हमारे अभ्यास हमारे अनुभव ऐसे पावरफुल हों कि दृष्टि देकर हम उन्हें कहेंगे तुम आत्मा हो, यहाँ बैठे हो, ज्योति बिंदु हो, आत्मा हो जाओ, तो बस लोग ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे, आत्मा होने में लगेंगे। ये शिव बाबा है, यहाँ रहता है, ये उसके गुण है, 5 मिनट में समझाया और बताया, योग लगाओ उस पर किरणें लो, लोग करने लगेंगे, ऐसा समय आ रहा है। इसके लिए अपनी स्थिति उस तरह की, क्योंकि जिनकी स्थिति मान होगी वो ये सब काम करेंगे। सेंटरों को पीस हाउस लाइट हाउस बनाना है, ताकि जो भी सेंटर में आए, ऐसा भी समय आएगा लोग ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बाबा ने कहा हुआ मानसिक रोग तूफानी बन जाएंगे संसार में, सबसे बड़ी सजा मानसिक रोग ही होती है। उस टाइम लोग ज्ञान नहीं सुनेंगे, वो इतने परेशान होंगे, योग लगाने का तो प्रश्न नहीं है। हमारे सेंटर का वाइब्रेशन बहुत सुंदर होगा, पीसफुल पावरफुल, तो वहाँ बैठेंगे बाबा के कमरे में या क्लासरूम में, और आधे घंटे में या 1 घंटे में रिलैक्स होकर जाएंगे। तो अपने सेंटरों को भी ऐसा बनाना है, और सेवाएं तो वैसी ही होनी है, लेकिन देने के लिए खुद को तैयार करना है।
एक प्रश्न और आए भाई साहब, बाबा की क्षेत्र चाहे से तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का, लौकिक बच्चों का क्या होगा जो ज्ञान में नहीं है?
देखिए, सबका उनके अपने कर्मों के अनुसार होगा, सबको कर्मों का फल मिलेगा, हम भी सुरक्षित होंगे। लेकिन अगर आपका पुण्य, आपकी सेवाओं में सहयोग आपने बहुत दिया, ये सब बहुत होगा, तो इसकी मदद उनको भी मिलेगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल आउट रास्ते पर हैं, बिल्कुल कलयुगी रास्ते पर, उन सबको आप जानते ही हो, तो फिर उन्हें बाबा की मदद नहीं मिलेगी।
बस ओके भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक चीज और सुना दूं सभी भाई बहनों को
जी,
अपने घर के ऊपर सभी, और जैसे आपका शांति सरोवर है, बाबा की विशाल छत्र छाया बनाया करें रोज, क्योंकि बाबा तो बेहद की छत्र छाया, उसकी छत्र छाया में तो सारा संसार आ जाता है। तो सभी अपने घर के ऊपर, अपने ऊपर विशाल छत्र छाया है, कुछ देर इस छत्र छाया में बैठे करें, इसको रिवाइज कर लिया करें। शक्तियों की छाया, छत्र छाया, शिव बाबा विश्व रक्षक, वो विशाल रूप से छत्र छाया है हमारे घर के ऊपर, ये भी निर्माण किया करें। तो बहुत अच्छा, आप सभी आगे बढ़ो, फिर मिलते रहेंगे कुलदीप दीदी, अपने फुलवारी में सुगंध भरते रहो आप।
ओम शांति। भाई सब संडे को कुमारों की बट्टी में भी आपका क्लास है।
हाँ, 11 बजे बता रूपेश में आज ही
11 बजे
करेंगे। ठीक,
थैंक यू भाई।
चलो एक मिनट बाबा का आह्वान कर लें, बाप दादा दोनों को बुलाएंगे अपने पास। आह्वान करें, फील करें, बाप दादा सामने आ गए। दृष्टि दे रहे हैं, और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।